नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
जयद्रथ का वध हुआ, वध नहीं हुआ, जयद्रथ का अत्याचार हुआ। भीमसेन ने जयद्रथ को दास बना लिया, मेरा दास बनेगा तू, यहां जहां भी जाएगा कहेगा मैं पांडवों का दास हूं। क्या ठीक, तो सब छोड़ दिया और जयद्रथ जाकर भगवान शंकर की तपस्या करने लगा। भगवान शंकर ने दर्शन दिए, बोल भाई क्या बात है, बहुत रोया गिड़गिड़ाया महाराज, क्या कहूं क्या नहीं कहूं, वरदान मांग, मैं पांचों पांडवों को जीतना चाहता हूं। भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता, पांडवों को न तो कोई जीत सकता है न पांडवों को कोई मार ही सकता है, केवल एक काम कर सकते हो, अर्जुन के अलावा केवल एक दिन कभी युद्ध होगा तो चारों को तुम धक्का देकर पीछे सिरका सकते हो, थोड़ा सा बस इतना वरदान दे सकता हूं, और वो भी अर्जुन नहीं होगा, अर्जुन का तुम इतना सा भी नहीं बिगाड़ सकते। क्यों, अर्जुन को मैंने पाशुपतास्त्र दिया है, अर्जुन नरावतार है, ठीक। उसके बाद सब लोग पांडव ऋषि मुनियों के साथ बैठे हुए चर्चा कर रहे थे, तो युधिष्ठिर जी ने पूछा कि महाराज आप तो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हो, आप हमको ये बताओ कि द्रौपदी इतनी श्रेष्ठ है, यज्ञ की वेदी में से पैदा हुई है, महात्मा पांडवों की पुत्र वधु है, हम लोगों की धर्म पत्नी है, कितना कितना संकट द्रौपदी पर ही आया है, और ये पापी जयद्रथ इसका हरण करने का साहस कर लिया, हम लोग अपने सगे संबंधियों से दूर होकर जंगल में नाना प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं, क्या कोई संसार में हमारे जैसा मंद भाग्य वाला है क्या, हुआ क्या, देखा क्या और सुना क्या जो जंगलों में फिरता हो और जिसकी स्त्री का किसी ने हरण कर लिया हो और जो धर्म पर रहने वाला हो। मार्कंडेय जी बोले कि भाई ये घटना तो हुई हुई है, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को भी वनवास हुआ और स्त्री के वियोग का कष्ट हुआ, तुम लोगों को तो स्त्री का इतना वियोग नहीं हुआ, पीछा करके तुम तो जयद्रथ को बस में करके जल्दी ले आए, राम जी के यहां बड़ी मुश्किल हो गई थी, राक्षस राज दुरात्मा रावण माया जाल बिछाकर रामचंद्र जी की पत्नी को हर ले गया, जटायु ने जाकर बचाने का प्रयत्न किया तो उसको भी मार डाला, फिर रामचंद्र जी सीता जी को प्राप्त करने के लिए सुग्रीव की सहायता लेकर के आए, सहायता लेकर लंका में आए, लंका को भस्म कर दिया, सीता को ले आए। युधिष्ठिर जी ने कहा हे मुनिवर, राज्य वगैरह छोड़ करके हम लोग आजकल वन में निवास करते हैं, वनवासी को तो ऋषि मुनियों के द्वारा पुण्य कर्मा श्रेष्ठ पुरुषों के चरित्र को तो सुनना है, यही हमारा काम रह गया। तो मैं रामचंद्र जी का चरित्र विस्तार से सुनना चाहता हूं। ये कौन से वंश में प्रकट हुए, कितना बल था, कैसा पराक्रम था, और ये भी बताना कि रावण किसका पुत्र था और रामचंद्र जी से क्या बैर था। मार्कंडेय जी बोलने लगे, सुनो बहुत पवित्र तुमको चरित्र सुनाता हूं। इक्ष्वाकु वंश में एक अज नाम से प्रसिद्ध राजा हुए, उनके पुत्र थे दशरथ जी, बड़े पवित्र आचरण वाले स्वाध्यायशील। दशरथ के धर्म और अर्थ का तत्व जानने वाले चार पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राम की माता कौशल्या थी, भरत की माता कैकेयी थी तथा लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। विदेह देश के राजा जनक की एक पुत्री थी जिसका नाम था सीता, उसे स्वयं विधाता ने ही रामचंद्र जी की प्यारी रानी होने के लिए रचा था, इसलिए मैंने राम और सीता के जन्म का वृत्तांत बतलाया है। रावण के जन्म की कथा सुनो। संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले स्वयंभू ब्रह्मा जी रावण के दादाजी थे। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त्य जी थे। पुलस्त्य जी की पत्नी का नाम था गौ, उससे वैश्रवण माने कुबेर नाम का पुत्र हुआ। वह अपने पिता को छोड़कर पितामह की सेवा करने लगा, कुबेर ब्रह्मा जी की सेवा करने लगा। पुलस्त्य को बड़ा विचार आया कि देखो मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता है, मेरे बाप की सेवा करता है। तो उसने योग बल से अपने आप को दूसरे शरीर से प्रकट किया। इस प्रकार आदि शरीर से रूपांतर धारण कर पुलस्त्य जी विश्रवा नाम से विख्यात हुए। वे पुलस्त्य जी ही विश्रवा थे और वे कुबेर पर सदा नाराज रहते थे, लेकिन कुबेर जी बड़े भाग्यशाली थे कि उन पर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको अमरत्व का वरदान दे दिया, धन का स्वामी बना दिया, लोकपाल बना दिया और भगवान शंकर से मित्रता करवा दी और नलकुबर नाम का पुत्र भी दे दिया कुबेर को। उन्होंने राक्षसों से भरी लंका को कुबेर की राजधानी बना दिया और एक इच्छानुसार विचरण करने वाला पुष्पक विमान भी दे दिया और यक्षों का स्वामी बना दिया और उसको राजराज की उपाधि दे दी, सब राजाओं का राजा। पुलस्त्य जी चिढ़ गए कि ज्यों ज्यों मैं नाराज होता हूं त्यों त्यों ब्रह्मा जी उसको बहुत कुछ दे देते हैं। तो वे कुबेर को कुपित दृष्टि से देखने लगे। राक्षसों के स्वामी कुबेर को जब ये मालूम हो गया कि मेरे पिता मेरे पर नाराज हैं, तो वह उनको प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। उन्होंने तीन राक्षस कन्याओं को पिता की सेवा में नियुक्त कर दिया। वे बड़ी सुंदरी और नाचने गाने में निपुण थी। तीनों ही अपना भला चाहती थी, इसलिए एक दूसरे से लाग डांट रखकर सदा महात्मा विश्रवा को संतुष्ट करने का प्रयत्न करना चाहती थी। तीनों के अलग अलग नाम, एक का नाम पुष्पोत्कटा, एक का नाम राका और एक का नाम मालिनी। मुनि उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए और प्रत्येक को लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। पुष्पोत्कट के दो पुत्र वे, एक रावण और एक कुंभकर्ण। इस पृथ्वी पर इनके समान बलवान दूसरा कोई नहीं था। मालिनी से एक पुत्र विभीषण का जन्म हुआ और राका के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम था खर और पुत्री का नाम था शूर्पणखा। विभीषण इन सब में अधिक सुंदर, भाग्यशाली, धर्मरक्षक, सत्कर्म कुशल और बड़े ही विनीत स्वभाव के थे। रावण के 10 मुख थे, वह सबसे बड़ा था। उत्साह, बल और पराक्रम में वो महान था। शारीरिक बल में कुंभकर्ण सबसे बड़ा चढ़ा था। मायावी और रणकुशल तो था ही, देखने में बड़ा भयंकर लगता था। खर था वो धनुर्विद्या में बड़ा पराक्रमी था। वो मांसाहारी और ब्राह्मणों का द्वेषी था खर। शूर्पणखा बड़ी डरावनी आकृति वाली थी। शूर्पणखा ऋषि मुनियों की तपस्या में जाकर हा हू करके बाधा डालती थी। एक दिन की बात है, कुबेर महान समृद्धि से युक्त हो पिता के साथ बैठे थे। रावण आदि ने जब कुबेर का वैभव देखा तो उनके मन में ईर्ष्या और डाह पैदा हो गई। उन्होंने विचार किया कि ये कुबेर हमारा ही भाई और सोने की नगरी में रहता है, इतना बड़ा ऐश्वर्य है, पुष्पक विमान है, हम लोग यूं ही बैठे हैं। उसने तपस्या की, ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। रावण एक पैर से खड़ा होकर पंचाग्नि तापता हुआ वायु के आहार पर रहकर एकाग्र चित्त से 1000 बरस तक तपस्या करता रहा। कुंभकर्ण ने भी तपस्या की, क्योंकि उनके मन में भी डाह पैदा हुई थी। कुंभकर्ण में आहार का संयम किया, भूमि पर सोता था, कठोर नियमों का पालन करता था। विभीषण ने तपस्या तो की, लेकिन उसका मन कभी डाह से नहीं भरा हुआ था। वह सूखा पत्ता खाकर रहता, उपवास में प्रेम करता और सदा वो जप किया करता था। भी उतने ही वर्षों तक कठोर तप किया जितने वर्षों तक रावण ने किया। खर और शूर्पणखा ये भाई बहन भी तपस्या में लगे हुए थे और अपने भाइयों की प्रसन्न चित्त से सेवा भी करते थे। 1000 वर्ष पूरा होने पर रावण ने अपना मस्तक काटकर अग्नि में दे दिया, आहुति दे दी। उससे ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं जाकर उनको तपस्या से रोका और कहा, ये क्या करते हो भाई, बोलो, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, लेकिन तपस्या से निवृत्त हो जाओ। हां एक बात है, अमृत के अलावा जो मांगो वो दे दूंगा। बोलो तुम क्या चाहते हो। देखो रावण, तुमने महत्वपूर्ण पद प्राप्त करने की इच्छा से अपने मस्तक को उतार के दिया है, तो तुम्हारे एक मस्तक के साथ 10 मस्तक हो जाएंगे। तुम इच्छानुसार रूप धारण कर सकोगे, जब चाहो तब तुम कैसा ही रूप बना सकोगे और युद्ध में शत्रुओं पर विजयी बनोगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो तुम किससे विजय चाहते हो। रावण बोला, महाराज, ब्रह्मा जी, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर, भूतों से मेरी कभी पराजय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। याद रखना रावण, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है इनमें से किसी से भी तुम्हें भय नहीं होगा, लेकिन तुमने मनुष्य का नाम नहीं लिया है, इसलिए कभी भी तुम्हारे पर भय आएगा तो मनुष्य से ही आएगा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा लापरवाही, मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे, मनुष्यों को तो उठा उठा कर मैं भोजन का ग्रास बनाता हूं, भक्षण करता हूं, मनुष्य मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए मैंने मनुष्यों से निर्भय होकर आपसे वरदान मांगा है। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से कहा। ब्रह्मा जी बहुत घबरा रहे थे, उनकी बुद्धि में यह आया ये कुंभकर्ण तो बड़ी विचित्र चीज मांगेगा, लेकिन अब वरदान तो देना ही पड़ेगा। उस समय कुंभकर्ण की बुद्धि मोह से ग्रस्त थी, वो कहना तो ये चाहता था कि मैं एक दिन सोऊं, छह महीने जगूं, लेकिन उसके मुंह से निकला मैं छह महीने सोऊं, एक दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने आव देखा न ताव देखा, तत्काल कह दिया जाओ तथास्तु। ब्रह्मा जी खुश हो गए। कुंभकर्ण को जब बाद में होश आया कि महाराज मैंने क्या मांगा, अरे तुमने छह महीने नींद का विश्राम मांगा है और एक दिन ही तो तुम जगोगे, महाराज मैं तो उल्टा बोल गया, भाई मैंने तथास्तु कह दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। विभीषण के पास गए, बड़े स्नेह से बोले बेटा बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे जप और ध्यान पर, तुम क्या वरदान मांगते हो? विभीषण ने कहा भगवान बहुत बड़ा संकट आने पर भी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा संकट आने पर भी मेरे मन में कभी भी पाप का विचार न आए तथा बिना सीखे ही मेरे हृदय में ब्रह्मास्त्र के प्रयोग की विधि स्फुरित हो जाए, बस यही चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तुम राक्षस योनि में जन्म लेकर भी अधर्म में नहीं लगना चाहते, जाओ तुमने नहीं मांगा वो वरदान देता हूं, अमर होने का वरदान देता हूं, तुमने मांगा तो वो देता ही हूं, तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। इसलिए विभीषण जी अमर है, सप्तैते चिरजीविन है। मार्कंडे जी कहने लगे युधिष्ठिर इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने के बाद रावण ने सबसे पहले लंका पर धावा बोल दिया, क्योंकि कुबेर लंका में ही रहता था, कुबेर को युद्ध में जीत कर लंका से बाहर कर दिया। भगवान कुबेर लंका छोड़कर गंधर्व यक्ष राक्षस किन्नरों के साथ गंधमादन पर्वत पर आने लगे, रहने लगे। रावण ने उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया। इससे रुष्ट होकर कुबेर ने रावण को शाप दिया कि मैं तुमसे बड़ा हूं और तुमने बड़े भाई का इतना अपमान किया है, तो जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, यह विमान तुम्हारी सेवा में कभी नहीं रह सकता। जो युद्ध में तुम्हें मारेगा उसी का ही यह वहन करेगा, तुम्हारा कभी भी वहन नहीं कर सकेगा, और तुमने बड़ों का अपमान किया है इसलिए अब तुम बहुत जल्दी नष्ट भी हो जाओगे। युधिष्ठिर अपने से बड़ों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। विभीषण धर्मात्मा थे, सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके सदा कुबेर का अनुसरण किया करते थे। प्रसन्न होकर कुबेर ने अपने छोटे भाई विभीषण को अपने छाती से लगाकर कहा विभीषण मैं तुमको यक्ष और राक्षसों की सेना का सेनापति बनाता हूं। इधर मनुष्य भक्षी राक्षस और महाबली पिशाचों ने मिलकर रावण को अपना राजा बना लिया। दशानन बड़ा बलवान, उसने चढ़ाई करके दैत्यों और देवताओं के पास जितने रत्न थे सब छीन लिए। सारे संसार को रुलाने के कारण से उसका नाम रावण पड़ा। देवताओं को वह सदा डराता ही रहता था। तदनंतर रावण से कष्ट पाए हुए ऋषि देवर्षि सिद्धगण अग्निदेव को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए और अग्नि ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने इसको क्या वरदान दे दिया? इस आपके दिए हुए वरदान से तो जनता को प्रसन्नता होनी चाहिए, ये सारे संसार को कष्ट दे रहा है, अब आप ही हमारी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो देवताओं, सुनो यक्षों, आप लोग सुनो, देखो इसको युद्ध में कोई नहीं जीत सकता, मैं क्या करूं, इसने ऐसा ही वरदान मांगा, ऐसी तपस्या की, लेकिन सबका समय आता है, अब शीघ्र ही इसका समय आएगा। मैंने रावण को वरदान देने के बाद सीधे चतुर्भुज भगवान विष्णु से अनुरोध किया था, हे भगवान, मेरे से वरदान देने में व्यवस्था से रावण को यह कह दिया गया है कि तू इनसे नहीं मरेगा, अब मेरी प्रार्थना सुनो और आप संसार में मनुष्य रूप से पधार कर रावण का दमन करो। भगवान ने मुझे कहा है, ब्रह्मा जी, जिस समय आप वरदान दे रहे थे उस समय मैं सोच रहा था कि मुझे क्या करना है। ब्रह्मा जी ने इंद्र को कहा, इंद्र, तुम सब देवताओं के साथ पृथ्वी पर रीछ और बांदरों के रूप में जन्म ले हो और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बलवान पुत्र बनो। फिर दुंदुभि नाम के गंधर्वों से कहा, तुम देवताओं की कार्यों की सिद्धि के लिए पृथ्वी पर अवतार धारण करो। ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर दुंदुभि, देखो दुंदुभि नाम वाली एक गंधर्वी थी, गंधर्वी गंधर्वनी गंधर्वी, कि तुम देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर जाओ। तो ब्रह्मा जी का आदेश सुनकर वो दुंदुभि मंथरा के नाम से अवतीर्ण हुई। वह शरीर से कुबड़ी थी। इसी प्रकार इंद्रादि देवताओं ने भी अवतीर्ण होकर रीछ और बानरों की स्त्रियों में पुत्र उत्पन्न किए। वे सब बानर और रीछ यश तथा बल में अपने पिता देवताओं के समान थे। पर्वतों के शिखर तोड़ देते थे, साल ताड़ वृक्ष उखाड़ लेते थे, पत्थर की चट्टानों को वे मामूली कंकर पत्थर समझकर फेंकते थे। शरीर वज्र के समान अभेद्य और सुदृढ़ था। सभी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। ब्रह्मा जी ने सब व्यवस्था ठीक करके मंथरा से जो काम लेना था वो उसे समझा दिया कि मंथरे, अब तुम अयोध्या में चली जाओ और तुम्हारा काम केवल इतना ही है जो समय आने पर तुमको करा बता दिया है वो करना है। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मुनिवर, आपने तो रामचंद्र जी के कथा की बात कही थी, ये कहा था कि वे वनवास में गए थे और साथ में आप ये कहते हो कि दशरथ जी के बेटा, महाराज दशरथ के बेटा, ये राजा के पुत्र होकर वनवास में क्यों गए और उनके साथ में लक्ष्मण और सीता, इनको भी वन में क्यों जाना पड़ा? मार्कंडे ने कहा कि सुनो, मैं तुमको राम कथा शुरू से ही सुनाना चाहता था, तुमने प्रश्न कर लिया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो जब ब्रह्मा जी ने चतुर्भुज भगवान से प्रार्थना की तो वे चतुर्भुज भगवान अपने चार स्वरूपों से दशरथ के यहां आकर जन्म लिए और उनका तेज बढ़ने लगा। ये बच्चे देखने में बड़े सुहावने, बड़े विनयशील, बड़े आज्ञाकारी और इनकी प्रारंभिक चंचलता सबको बहुत प्रिय लगती थी। धीरे धीरे बड़े होने लगे, जनेऊ संस्कार हुआ, वेद तथा रहस्य सहित धनुर्वेद में पारंगत विद्वान हो गए, समयानुसार विवाह हुआ उस समय राजा विशेष प्रसन्न और सुखी हुए कि मेरे बेटों का विवाह हो गया। राम चारों पुत्रों में सबसे बड़े थे। वे अपने मनोहर रूप और सुंदर स्वभाव से सारे प्रजा को आनंदित करते थे। सबका मन उनमें रमता रहता था। राजा दशरथ बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने सोचा, मेरी अवस्था बहुत अधिक हो गई, क्या पता कब इस संसार से मैं चला जाऊं, अतः राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना मेरी अंतिम इच्छा है। उन्होंने अपने मंत्रियों और पुरोहितों से सलाह ली और सबने इसके साथ सहमति प्रकट कर दी। राम का क्या रूप बताएं? राम के नेत्र बड़े सुंदर लाल, भुजाएं घुटने तक हाथी के समान मस्ती की चाल थी, चौड़ी छाती थी, सिर पर काले काले घुंघरालू केश थे, देह की दिव्य कांति चमकती रहती थी। युद्ध में देवराज इंद्र से कम नहीं थे। उनका नयना विराम रूप देखकर शत्रु के भी नेत्र और मन लुभा जाते थे। धर्म के तत्ववेत्ता और बृहस्पति के समान वे बुद्धिमान भी बहुत थे। संपूर्ण प्रजा का उनमें अनुराग था। सभी विद्याओं में प्रवीण, जितेंद्रिय, दुष्टों को दंड देने वाले, धर्मात्मा, साधुओं के रक्षक, धैर्यवान, दुर्धर्ष, विजयी और अजेय थे। ऐसे गुणवान तथा माता कौशल्या का आनंद देने वाले पुत्र को देख देख कर दशरथ जी हरदम प्रसन्न रहते थे। रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करते हुए राजा दशरथ ने पुरोहित को बुलाकर कहा, हे ब्राह्मण, आज पुष्य नक्षत्र है, रात में बड़ा पवित्र योग आने वाला है, आप राज्याभिषेक की सामग्री एकत्रित कीजिए और राम को इसकी सूचना भी दे दीजिए। राजा की यह बात मंथरा ने चुपचाप कहीं से सुन ली, पीठ पीछे पर्दे के पीछे से सुन ली। वह ठीक समय पर केके के पास बोली, जाकर बोली, महारानी केके जी, आज आपके दुर्भाग्य की घोषणा होने वाली है, आज कौशल्या का भाग्य जगने वाला है। उसी समय तपाक से केके ने कहा, तुम क्या बोलती हो, मेरी बात को पूरा सुनो। कौशल्या का भाग्य कितना अच्छा है कि उसका पुत्र आज राज्याभिषेक के बाद राजा होने वाला है। तुम्हारे ऐसे भाग्य कहां है, तुम्हारा पुत्र तो राज्य का अधिकारी है ही नहीं, और ऐसे पुत्र को जन्म कर तुम यहां सुख भोगती हो। मंथरा की बात सुनकर परम सुंदरी केकई एकांत में अपने पति राजा दशरथ के पास गई और प्रेम जताती हुई हंस हंस कर मधुर शब्दों में बोली, हे महाराज, आप बड़े सत्यवादी हैं, आप तो जो बात कहते हैं वो पूरा करके ही रहते हैं ना। पहले जो मुझे एक बार आपने वरदान देने के लिए कहा था ना, उसे दीजिए। आज आपका चित्त बड़ा प्रसन्न है, इसलिए मैं आज प्रसन्न मन से ही लेना चाहती हूं। इतने दिन तक आप किसी न किसी चिंता में रहते थे। पहले आपको चिंता थी, मेरे पुत्र नहीं, मेरे पुत्र नहीं, मेरे पुत्र नहीं, तो बताओ उदासी मन से क्या मांगे। और आज आप जितने प्रसन्न हैं, इतना प्रसन्न मैंने आपको कभी नहीं देखा, इसलिए आज मैं आपसे वो पिछला वरदान लेना चाहता हूं जिसको कभी आपने मुझे देने के लिए कहा था। राजा बड़े खुश हो गए, कहने लगे, मेरी प्रिय रानी केकई, वस्तुतः तुमने मेरे हृदय को टटोल लिया, तुमने मेरे हृदय को जीत भी लिया, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। लो, क्या चाहते हो, तुम्हारी जो इच्छा हो बड़े खुलकर मांगो और मैं तुमको बड़े प्रसन्नता से देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। केके ने राजा को वचनबद्ध करके कहा, देखो मेरे मांगने से कहीं आपकी प्रसन्नता में कमी तो नहीं आ जाएगी? क्या बात करती हो तुम, मुझे तुम मुझसे मांगो और तुम्हारे मांगने से मैं अप्रसन्न हो जाऊं? तुमने फिर दशरथ को समझाई क्या है? केकी की द्वारा जो चीज मांगी जाएगी वो दशरथ बड़े प्रेम से उसको देगा। बोलो क्या चाहती हो? केकी ने कहा, महाराज मैं फिर आपसे कहती हूं, मैं आपको कभी नाराज नहीं देखना चाहती, इसलिए मेरी वरदान की बात सुनकर आप कहीं नाराज मत हो जाना। अरे केकई, प्रेम के अंदर कोई मांगता है तो देने में तो प्रसन्नता बढ़ती है, तुम नाराजगी की बात करती हो? केकई ने हंसते हुए कहा, अच्छा महाराज अब मैं मांगती हूं, आपने राम के लिए जो राज्याभिषेक का सामान तैयार कराया है ना, उससे भरत का अभिषेक कर दो और राम को वन में भेज दो। ये बात सुनते ही राजा को बड़ा दुख हुआ, कुछ बोला नहीं गए। जितनी प्रसन्नता थी उतनी अप्रसन्नता हो गई। कैकेयी ने कहा, बोलो, बोलिए ना महाराज। दशरथ जी कुछ नहीं बोले। दशरथ जी ने मुंह फेर लिया, मुंह फेर करके और नीचा मुख कर लिया। हृदय में इतना कष्ट हुआ कि उनका दुख आंसुओं से बहने लगा। केकी ने कहा, महाराज आपने कितनी प्रसन्नता से देने के लिए कहा, वो प्रसन्नता कहां गई? केकी ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा तो एकदम आपका चेहरा उदास हो गया, और कौशल्या ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा तो आपकी खुशियां आप में समा नहीं रही थी। हम सब आपकी पत्नियां हैं तो आपको सब पत्नियों में बराबर का भाव रखना चाहिए। यहां ऐसी बातें हो रही थी, इधर राम जी को मालूम हुआ कि पिताजी केकी को वरदान देकर मेरा वनवास स्वीकार कर चुके हैं, तो उनके मन में आया कि पिता की सत्य की रक्षा के लिए प्रसन्नता से वन की ओर जाना चाहिए। राम जी को जाता हुआ देखकर लक्ष्मण ने कहा, कहां जा रहे हैं? कि वन में। क्यों? पिता की वाणी सत्य करने के लिए, तो मैं भी आपके पीछे चलूंगा। सीता ने भी राम का साथ दिया, राम वन में चले गए। दशरथ जी ने कभी केकई से बात नहीं की और शरीर त्याग दिया। केकई ने भरत को ननिहाल से बुलाया और कहा, देखो भरत, होना है सो तो हो गया, बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य का विचार क्या करते हैं। राजा स्वर्गवासी हो गए, राम लक्ष्मण वन में गए, ये विशाल साम्राज्य अब कोई इसमें बाधा नहीं, निष्कंटक राज्य है, इसे तुम स्वीकार करो, क्योंकि इसे मैंने बड़े प्रयत्न से दशरथ जी से प्राप्त किया है। ये बात सुनकर भरत बड़े क्रुद्ध होकर कहने लगे, कुलघातिनी, धन के लालच में पुत्र के मोह में इतनी क्रूरता करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? पति की हत्या कर दी, इस वंश की कुल परंपरा का नाश कर दिया, मेरे माथे पर कलंक का टीका लगा दिया। इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगे। सारी प्रजा के सामने उन्होंने सफाई दी कि हे प्रजाजनों, आपके हृदय में जो राम के वियोग का कष्ट है वो सारा इकट्ठा किया जाए तो भी मेरे हृदय में जो कष्ट हो रहा है वो कम नहीं है। मैं राम जी को लौटा लेने की इच्छा से कौशल्या, सुमित्रा, केकी को आगे करके शत्रुघ्न के साथ वन में जाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ चलो। सब लोग साथ हो गए, चित्रकूट पर पहुंचे, राम जी का वन स्वरूप देखा, भरत बेहोश हो गए। किसी प्रकार से भी होश में आने पर राम जी को अयोध्या लौटने के लिए बहुत आग्रह करने लगे। राम जी की एक ही बात थी, भरत तुमको राज्य मिलने के दुख से यदि मैं वन में आया होता तो तुम्हारे द्वारा ये कहना उचित था, लेकिन पिता की आज्ञा है, पिता ने वरदान दिए है, उधर विचार करो। और पिता की आज्ञा का पालन जैसे मेरे लिए अनिवार्य है, इसी प्रकार मेरे प्रिय भरत तुम्हारे लिए भी अनिवार्य है, तुम भी अयोध्या में रहो। जैसे तैसे उनको विदा कर दिया और राम जी की चरण पादुका लेकर वे नंदीग्राम में रहने लगे, राज्य का प्रबंध करने लगे। इधर राम जी ने सोचा कि यदि चित्रकूट पर ज्यादा रहूंगा तो नगर के लोग बराबर आते जाते रहेंगे, इसलिए वे वहां से सर्वंग ऋषि के आश्रम में चले गए। सर्वंग का आदर सत्कार करके दंडकारण्य में जाकर गोदावरी नदी के सुरम्य तट पर रहने लगे। वहां पास ही जनस्थान नाम का एक वन भाग था जिसमें खर राक्षस रहता था। अपनी बहन शूर्पणखा के साथ वे ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालते थे। शूर्पणखा के कारण राम का उनके साथ बैर हो गया। राम जी ने वहां तपस्वियों की रक्षा के लिए 14,000 राक्षसों का संहार किया। महाबलवान खर और दूषण का वध करके उन्होंने उस स्थान को धर्मारण्य एवं निर्भय बना दिया। शूर्पणखा के नाक और होठ काट दिए गए। देखो, नाक और कान की बात है, होठ और नाक तो कन्नक नहीं है। शूर्पणखा के नाक और होठ काट दिए गए, इस कारण ये विवाद खड़ा हुआ था। जनस्थान के भी सब राक्षस मारे गए। शूर्पणखा ने देखा अब अकेली रह गई, कहीं मेरा भी इन्हीं मरने वालों में नाम न आ जाए। वो सीधा अपना रूप बदलकर लंका में गई और दुख से व्याकुल होकर रावण के चरणों में गिरी और खूब खूब बनावटी बातें करके और रो रो करके रावण के हृदय में दुर्भाव पैदा किए। उसके मुख पर खूब खून लगा हुआ, वो खून सूख गया और अपने भाई के सामने सब बात बताई कि देखो, तुम्हारे लिए हमने सब नाश का दृश्य देखा है। अपनी बहन को इस विकृत अवस्था में देखकर रावण क्रोध से विवल हो उठा, दांत कटाकटाता हुआ सिंहासन से कूद पड़ा। उसने मंत्रियों को वहीं छोड़ एकांत में जाकर शूर्पणखा से कहा, कल्याणी बताओ, क्या तुमने अपने नाक और अपने होठ और नाक काटने वाले को ये नहीं कहा कि मैं रावण की बहन हूं? उसने तुम्हारे नाक और होठ नहीं काटे, उसने मेरा अपमान किया है, नाम बताओ उसका। कौन तीखा त्रिशूल लेकर अपने सारे अंग में चुभोना चाहता है, बताओ? सिंह की दहाड़ में हाथ डालकर बेखट कौन खड़ा है? ये सारी त्रिलोकी को जीतने वाला रावण और उसके बहन की ये दशा? रावण के नाक कान आंख, इनमें से आग की लपटें निकलने लगी। शूर्पणखा ने देखा कि रावण का खूब क्रोध बढ़ गया है, तब उसने सारे वृत्तांत की कथा सुनाई। तब रावण ने कहा, अच्छा, अपनी बहन को सांत्वना दी, अपने कर्तव्य का निश्चय करके नगर की रक्षा का प्रबंध किया और आकाश मार्ग से उड़कर चला। उसने गहरे महासागर को बड़े आसानी से पार किया, फिर ऊपर ही ऊपर गोकर्ण तीर्थ में पहुंचा और वहां जाकर रावण अपना भूतपूर्व मंत्री मारीस था उससे मिला, जो राम जी के डर के कारण से यहां छिपकर तपस्या करता था। ये मारीच रावण का भूतपूर्व मंत्री। रावण को आया देखकर मारीच सहसा खड़ा हो गया, फल मूल आदि लाकर उसके सामने रख दिए, कुशल समाचार पूछा और कहा, हे राक्षस राज, आज से पहले कभी मैंने आपको इतना व्यग्र नहीं देखा है। आपके चेहरे पर उदासी, घबराहट, भय, क्या बात है? ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि आप तत्काल यहां इस समय में मेरे पास आए? मुझसे यदि आपकी कोई सेवा होने वाली हो तो निसंकोच बताओ, वो मैं अपना काम जरूर पूरा करूंगा। रावण क्रोध और अमर्ष में भरा हुआ था, उसने एक एक करके राम की सारी करतूतें संक्षेप में बताई। सुनकर मारीच ने कहा, रावण मेरी बात सुनो, मैं आपका मंत्री रह चुका हूं, मैंने अपने मंत्री काल में कभी आपका अनिष्ट नहीं किया है, इसलिए मेरे भूतपूर्व कार्यों पर विचार करके मेरे निवेदन को सुनो। रामचंद्र जी के पास जाने से आपका कोई भला होने वाला नहीं है, मैं उनका पराक्रम जानता हूं, इस जगत में ऐसा कौन है उनके वाणों को सह सके। उन्हीं महापुरुष के कारण आज मैं यहां सन्यासी बना हुआ बैठा हूं, बदला लेने की नीयत से उनके पास जाना मृत्यु के मुख में जाना है। रावण आप इस बात को सच्ची मानिए, मुझे ऐसा लगता है किसी दुरात्मा ने आपको ये सलाह दी है, मेरी सलाह पर विश्वास करो और उस सलाह को आप छोड़ दो। रावण के क्रोध का पारा और चढ़ गया। मारीच, यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो निश्चय जान तुझे अभी मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। मारीच ने नीचा सिर किया, मन ही मन में सोचा, यदि मेरी मृत्यु निश्चित ही है तो श्रेष्ठ पुरुष के हाथ से मरना चाहिए, क्योंकि ये मृत्यु, मानव जीवन की मृत्यु बार बार थोड़ा ही मिलती है। फिर उसने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारी क्या सहायता करूं। रावण बोला, तुम एक सोने का मृग बनकर, सींगों को रत्नों के अंदर ढालकर, शरीर के रोए रोए में मणियां मणियां चमका कर, वन के अंदर सीता के आश्रम के पास फुदकते रहो, लुभाओ, सीता तुम्हें देखते ही पकड़ने के लिए दौड़े, सीता के हाथ मताओ, और फिर रामचंद्र तुम्हारे पास आए, फिर रामचंद्र को तुम ये मिला करके दूर ले जाओ। बस जब तुम राम को बहुत दूर ले जाओगे उसके बाद मैं सीता को हर लाऊंगा। रामचंद्र अपनी प्यारी स्त्री के वियोग में बेसुध होकर प्राण त्याग देंगे, बस यही मेरा काम है और तुम्हें यही मेरी सहायता करनी है। रावण की बात सुनकर मारीच रावण के चरणों में गिरते हुए कहा, महाराज मैं आपसे अंतिम निवेदन करता हूं, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा काम आसान नहीं है, मैं मृग बन जाऊंगा परंतु आप इस प्रकार का खतरा मत मोल लीजिए। रावण ने कहा, मारीच मेरा आदेश तुम्हारे लिए विचार का विषय नहीं होना चाहिए, पालन का विषय होना चाहिए। मारीच आगे आगे, रावण उसके पीछे पीछे। रामचंद्र जी के आश्रम के निकट पहुंचकर दोनों ने पहले की सलाह के अनुसार अब कार्य प्रारंभ किया। मृग रूप में मारीच ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ जहां सीता उसको आसानी से देख सकती थी। युधिष्ठिर, विधि का विधान प्रबल है, उसकी प्रेरणा से संपूर्ण संसार की जननी सीता भी बच नहीं सकी, वो भी मारीच को मारीच जान नहीं सकी। उसने सोचा कि बड़ा सुंदर मृग है, इसके साथ खूब खेलूंगी। सीता ने राम को मृग को जीवित या मृत लाने के लिए भेज दिया। श्री रामचंद्र जी सीता का प्रिय करने के लिए हाथ में धनुष लेकर मृग का पीछा करने लगे। लक्ष्मण को सीता की रक्षा में नियुक्त कर दिया। उनको अपना पीछा करते देखकर इधर मृग कभी छिपता कभी प्रकट होता, कभी छिपता कभी पास कभी दूर, कभी पास कभी दूर, बहुत दूर ले गया। रामचंद्र जी ने जान लिया था कि है तो ये निशाचर। सब जानने वाले राम जी ने अपने अचूक बाण का उसे निशाना बनाया और रामचंद्र जी के बाण की चोट खाकर मारीच ने राम जी के स्वर में ही हा सीते हा लक्ष्मण ऐसा कहकर आर्तनाद किया। ये करुणा भरी पुकार सुनकर सीता जिधर से आवाज आई उसी ओर दौड़ पड़ी। ये देखकर लक्ष्मण ने कहा, माता डरने की बात नहीं, भला संसार में ऐसा कौन है जो राम को मार सके, घबराओ नहीं, एक ही मुहूर्त में तुम अपने पतिदेव और श्री रामचंद्र जी को यहां उपस्थित देखोगी। लक्ष्मण की बात सुनकर सीता ने उन्हें संदेह भरी दृष्टि से देखा। यद्यपि वह साध्वी और पतिव्रता थी, सदाचारी उसका भूषण था, तथापि स्त्री स्वभाववश वह लक्ष्मण के प्रति बड़े कठोर वचन कहने लगी। लक्ष्मण भगवान के प्रेमी और सदाचारी थे, सीता के मर्म भेदी वचन सुनकर उन्होंने दोनों कान बंद कर लिए। उन्होंने देखा कि सीता यदि जितना कटु वचन बोलेगी उतनी ही ज्यादा सीता को दोष लगेगा। सीता को दोष न लगे इसलिए लक्ष्मण जी जिस मार्ग से राम जी की आवाज आई थी गए थे उसी मार्ग पर चल पड़े। हाथ में धनुष ले राम के चरण चिन्हों को देखते देखते आगे बढ़ गए। इसी अवसर पर साध्वी सीता को हर ले जाने की इच्छा से एक बड़ा सुंदर सन्यासी का वेश बनाकर रावण उपस्थित हो गया। सीता सदा ही साधु सन्यासी यतियों का आदर करती थी, अपने आश्रम में आया देखकर धर्म को जानने वाली जनक निंदिनी सीता ने फल मूल सहित भोजन आदि से अतिथि सत्कार के लिए आमंत्रित किया और कहा, हे साधो विराजिए, आप फल स्वीकार कीजिए, जल स्वीकार कीजिए, आतिथ्य स्वीकार कीजिए। रावण ने पहले चारों तरफ देखा, फिर आकाश की तरफ देखा, फिर पृथ्वी की तरफ देखा, दाएं बाएं आगे पीछे सब देखकर रावण बोला, सीते मैं साधु सन्यासी नहीं, मैं राक्षस राज रावण हूं। मेरा नाम समाज संसार में सब जानते हैं। समुद्र के पार समुद्र के बीच में बड़ी सुंदरी मेरी लंकापुरी राजधानी है। आई सुंदरी, इस वन में तुम्हारा रहने का स्थान नहीं है, तुम तो लंका जैसी सुंदर नगरी में रहो, क्योंकि तुम्हारा शरीर भी सोने के समान देदीप्यमान है और मेरी लंका भी सोने की बनी हुई है, तो तुम्हारा निवास स्थान तो वो है। मैं तुम्हारे योग्य स्थान के लिए स्थापित करने के लिए यहां आया हूं, वहां तुम्हारी बहुत सी स्त्रियां सेवा करेंगी, तुम यहां वनवास में क्यों बैठी हो? अब तुम सब रानियों में श्रेष्ठ रानी कहलाओगी, चलो मेरे साथ लंका चलो। रावण के ऐसे वचन सुनकर जानकी ने अपने दोनों कान मूंद लिए और बोली, बस 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 बस, अब आगे अपने मुंह से कोई बात मत बोलना। आकाश से तारे टूट पड़े, पृथ्वी टूक टूक हो जाए, अग्नि अपनी उष्णता त्याग दे, तो भी मैं रामचंद्र जी का परित्याग नहीं कर सकती। यह कहकर वे आश्रम में जो ही अपनी कुटिया में प्रवेश करने लगी, रावण ने दौड़कर उसे रोक लिया और कठोर स्वर में डराने धमकाने लगा, सीते तुम नहीं जानती मुझ में कितना बल है, तुमने जो मेरे सामने इतनी बात कही और उसको मैंने सुना है, ये केवल तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम होने के कारण से सुना है, नहीं तो मेरे आदेश का पालन का उल्लंघन कोई नहीं कर सका। सीता जी बेहोश हो गई। रावण ने उसके केश पकड़कर बलपूर्वक वह आकाश मार्ग से लंका की ओर जाने का प्रयत्न करने लगा। वह जोर जोर से राम राम चिल्लाने लगी। राक्षस उसको ले जा रहा था। पर्वत की गुफा में रहने वाले गीदराज जटायु ने सीता को देखा। गीदराज जटायु अरुण का पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम था संपाति। राजा दशरथ के साथ जटायु की बड़ी मित्रता थी, इसी नाते सीता को अपनी पुत्र वधु के समान समझता था। रावण के चंगुल में फंसी देखकर जटायु के क्रोध की सीमा न रही। महान वीर तो वह था ही, रावण के ऊपर वेग से झपटा, ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तू मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे, यदि मेरी पुत्र वधु को नहीं छोड़ेगा तो तुझे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जटायु ने रावण को अपने चौंस से पंजों से छेदना प्रारंभ किया। नखों से पंखों से चौंस से मार मार कर उसके शरीर पर तिल तिल जितने घाव कर दिए। सारा शरीर फट गया, जर्जर हो गया, देह से रक्त की धारा बहने लगी, मानो किसी पहाड़ से झरना गिर रहा हो। राम जी का प्रिय और हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट पर चोट करते देखकर रावण ने अंत में तलवार ली और उसके दोनों पंख काट दिए। पंख कट जाने के बाद वह जटायु नीचे गिर गया और राक्षस सीता को लिए आकाश मार्ग से चल दिया। सीता को जहां कहीं मुनियों का आश्रम दिखता, जहां जहां नदी तालाब पोखरा दिखाई पड़ता, उन सब स्थानों पर वह कोई न कोई अपना गहना गिराती चली गई। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत चोटी पर बैठे हुए 5 बड़े बड़े बांदरों को देखा। वहां भी उसने अपने शरीर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षी को पक्षी के भांति बड़ी मौज से आकाश में चला जा रहा था। उसने बड़ी शीघ्रता से अपना मार्ग तय कर लिया और सीता के लिए विश्वकर्मा की बनाई हुई अपनी मनोहर पुरी लंका में जा पहुंचा और लंका में स्थापित कर दिया। इधर सीता हरी गई और उधर रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने कहा, लक्ष्मण ये क्या किया है, इतनी दूर आ गए, सीता को घोर जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आए? लक्ष्मण जी ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर रामचंद्र जी के मन में बड़ा दुख हुआ। शीघ्रतापूर्वक आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने देखा एक पर्वत के समान विशाल का एक गीद अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट में पहुंचे तो गीदराज ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो, मैं राजा दशरथ का मित्र गीदराज जटायु हूं। उसकी बात सुनकर दोनों भाई कहने लगे, अरे ये कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है? निकट आने पर उन्होंने उसके दोनों पंख कटे हुए देखे। गीद ने बताया कि सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मेरे दोनों पंख कट गए, अब मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गीद की वाणी एकदम बंद हुई। उन्होंने सिर हिलाकर दक्षिण दिशा की ओर इशारा किया और उनके प्राण निकल गए। राम जी ने पिता का मित्र होने के नाते उनका अंतिम संस्कार अपने हाथ से किया। तदनंतर आश्रम में जाकर देखा, कुश की चटाई उजड़ी हुई, कुटी उजाड़ हो गई, घर सूना। इससे सीता हरण का निश्चय हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। आश्रम के अंदर बड़े बड़े पैर वो धसे हुए और सीता जी के छोटे छोटे पैर, वो सब देखकर बड़े व्याकुल हो गए और दंडकारण्य में सीता जी को खोजने के लिए चल पड़े। चलते चलते मृगों के झुंड को देखा। थोड़ी देर बाद उनको एक भयानक कबंध दिखाई पड़ा, मेघ के समान काला, पर्वत के सदृश विशाल काय, साल वृक्ष की शाखा के समान उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं, चौड़ी छाती, विशाल आंखें, लंबा सा पेट और उसमें बहुत बड़ा मुंह, यही उसका हुलिया था। उसका माथा पेट में ही दसा हुआ। उस राक्षस ने अचानक आकर लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया और अपने मुंह की ओर खींचने लगा। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए, नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को धैर्य देते हुए कहा, नरश्रेष्ठ तुम खेद न करो, मेरे रहते हुए ये राक्षस तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखो मैं इसकी बाईं भुजा काटता हूं, तुम इसकी दाहिनी भुजा काटो। लक्ष्मण जी में जोश आ गया। ये कहते कहते राम ने तिल के पौधे के समान उसकी बाएं तीखी तलवार से काट दी, उसकी एक बाह तीखी तलवार से काट दी। फिर लक्ष्मण जी ने अपने खड्ग से उसकी दूसरी बाह काट दी और फिर पसली पर प्रहार किया। कबंध के प्राण पंखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसके शरीर से सूर्य के समान दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। रामचंद्र जी ने बोले, तुम कौन हो? अभी तो तुम राक्षस जैसे दिख रहे थे और अब दिव्य देह में आए हो, कौन हो तुम? हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज मैं विश्वावसु नाम का गंधर्व हूं, एक ब्राह्मण के श्राप से राक्षस योनि में आ पड़ा। आज आपके स्पर्श से मैं श्राप मुक्त हो गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं और अब आपको सीता का समाचार सुनाता हूं। लंका के राजा रावण सीता को हर ले गया है। यहां से थोड़ी दूर पर ऋष्यमुख पर्वत है, उसके निकट पंपा नामक छोटा सा सरोवर है। वहां ही अपने चार मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्णमालाधारी वानरराज बाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील स्वभाव आप ही के समान है, अवश्य वे आपकी सहायता कर सकते हैं। मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूं कि अब आपकी जानकी जी से अवश्य भेंट होगी। इतना कहकर वह दिव्य पुरुष अंतरित हो गया। राम और लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुनकर आश्चर्य में भी डूबे, प्रसन्नता भी हुई और सीता के वियोग का कष्ट भी था। कई भाव एक साथ पैदा हुए। तदनंतर सीता हरण के दुख से व्याकुल श्री रामचंद्र जी पंपा सरोवर पर आए। उसके जल में स्नान करके उन्होंने पितरों का तर्पण किया। फिर दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ने लगे। उसी समय पर्वत की चोटी पर उन्हें पांच बानर दिखाई दिए। सुग्रीव ने देखा, इस पर्वत पर कौन चढ़ रहे हैं? उन्होंने बुद्धिमान मंत्री हनुमान को उनके पास भेजा। हनुमान से बातचीत होने पर दोनों उनके साथ सुग्रीव के पास आए। श्री राम जी ने सुग्रीव के साथ मैत्री की और अपना कार्य का निवेदन किया। उनकी बात सुनकर बानरों ने उन्हें वह दिव्य वस्त्र दिखलाया जिसे हरण के समय सीता ने आकाश से नीचे डाल दिया था। उसे पाकर राम को और भी निश्चय हो गया कि अब तो सीता को रावण ही ले गया है। उस समय रामचंद्र जी ने सुग्रीव को समस्त भूमंडल के बानरों के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। साथ ही उन्होंने ये प्रतिज्ञा भी की कि मैं युद्ध में बाली को मार डालूंगा। तब सुग्रीव ने भी सीता को ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा की। इस प्रकार एक दूसरे की प्रतिज्ञाएं हो जाने के बाद विश्वास दिला दिया और फिर सब मिलकर युद्ध की इच्छा से किष्किंधा पहुंचे। वहां पहुंचकर सुग्रीव ने बड़े जोर से गर्जना की। बाली सुग्रीव का यह गर्जना नाद सुन नहीं सका और उसे युद्ध के लिए निकलते देख बाली की स्त्री तारा ने बाली का हाथ पकड़ते हुए कहा, नाथ, आज सुग्रीव का जैसा सिंहनाद है उससे मालूम होता है कि आज इसको किसी का बहुत बड़ा बल मिला हुआ है, उसे कोई बलवान सहायक मिला है। मेरा आपसे निवेदन है, मेरे सुहाग की रक्षा के लिए आप आज घर से बाहर न निकलें। बाली ने कहा, प्रिय, तुम संपूर्ण प्राणियों की आवाज से ही उनके विषय में सब कुछ जान लेती हो क्या? यदि ये बात है तो सोचकर बताओ, सुग्रीव को किसने सहारा दिया है? तुम तो आवाज पहचानती हो ना, तो बताओ। सुग्रीव तारा थोड़ी देर चुप रही और बाद में बोली, हां, मैं आवाज सुनकर ही पहचान गई हूं। राजा दशरथ के पुत्र महाबली राम की स्त्री सीता को किसी ने हर लिया है और उसकी खोज के लिए उन्होंने सुग्रीव से मित्रता जोड़ी है। दोनों ने एक दूसरे के शत्रु को मारने की प्रतिज्ञा की है। रामचंद्र जी धनुर्धर है, उनके छोटे भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी हैं, उन्हें भी कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इनके सिवा मैंद, द्विविध, हनुमान और जाम्बवान, ये चार सुग्रीव के मंत्री ऋषिमुख पर्वत पर हैं ही, बड़े बलवान हैं। अतः इस समय रामचंद्र जी के बल का सहारा लेने के कारण सुग्रीव तुम्हें मार डालने में समर्थ है। तारा ने यद्यपि उसके हित की बात कही तो भी उसने उसके ऊपर आक्षेप किया और किष्किंधा गुफा के द्वार से निकलकर गया। सुग्रीव माल्यवान पर्वत के पास खड़ा था। वहां पहुंचकर बाली ने उससे कहा, अरे, तू तो अपनी जान बचाता फिरता था, पहले अनेकों बार तुझे युद्ध में जीतकर मैंने भाई जानकर जीवित छोड़ दिया, क्या उसका फल यह है? आज फिर अपने मरने का दिन देखकर जल्दी आ गए, क्या बात है? तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है, तो आओ सुग्रीव, बाली से युद्ध करो। उसकी बात सुनकर सुग्रीव भगवान राम को सूचित करते हुए से बोले, भैया, तुमने सूचित करते हुए हेतु भरे वचन बाली से बोला, भैया, तुमने मेरा राज्य लिया, स्त्री छीन ली, अब मैं किसके आश्रय जीवित रहूं? यही सोचकर मैं मरने के लिए आया हूं, ऐसे जीने से क्या लाभ है? ऐसे बहुत सी बातें होती रही। सुग्रीव और बाली दोनों एक दूसरे से गुथ गए। उस युद्ध में साल और ताड़ के वृक्ष तथा पत्थर की चट्टाने अस्त्र शस्त्र बनी हुई, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं, दोनों जमीन पर गिरते हैं, दोनों ही उठते हैं, पैंतरे बदलते हैं, मुक्के लगाते हैं, घूंसे लगाते हैं, लात मारते हैं, लात खाते हैं, नख से एक दूसरे के शरीर को फाड़ते हैं, दांत से एक दूसरे को काटते हैं, सब लहू लुहान हो रहे हैं। पता नहीं है कि कौन बाली है और कौन सुग्रीव है, क्योंकि सबके ऊपर खून और मिट्टी छाई हुई है। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के पहचान के लिए उनके गले में एक माला डाल दी। चिन्ह के द्वारा सुग्रीव को पहचान कर भगवान राम ने अपना महान धनुष खींचकर चढ़ाया और बाली को लक्ष्य करके बाण छोड़ दिया। वह बाण बाली के छाती में जा लगा। बाली ने एक बार अपने सामने खड़े हुए लक्ष्मण सहित भगवान राम को देखा और उनके इस कार्य की निंदा करता हुआ मूर्छित होकर जमीन पर गिर गया। बाली की मृत्यु के पश्चात सुग्रीव ने किष्किंधा के राज्य और तारा पर अपना अधिकार जमा लिया। फिर बरसात का समय आ गया। राम जी माल्यवान पर्वत पर रहे 4 महीने। उन दिनों सुग्रीव ने भली भांति उनका स्वागत सत्कार किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, इधर लंका में काम के वशीभूत वे रावण ने सीता को लंका में ले जाकर एक सुंदर भवन में ठहराया। वह भवन नंदनवन के समान मनोहर उद्यान के भीतर अशोक वाटिका के निकट बना हुआ था। सीता तपस्विनी वेश में वहां रहती, प्राय तप उपवास क्रिया करती, रामचंद्र जी का नित्य निरंतर ध्यान करती करती दुबली हो गई। बड़े कष्ट से दिन बीत रहे थे। रावण ने सीता की रक्षा के लिए कुछ राक्षसियों को नियुक्त कर रखा था। उनकी आकृति बड़ी भयानक थी, कोई फरसा लिए हुए तो कोई तलवार लिए हुए, किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में मुदगर, कोई जलती हुई लुवाठी लिए रहती थी। सब की सब सीता को सब ओर से घेर कर बड़ी सावधानी के साथ रात दिन उसकी रक्षा करती थी। वे बड़े विकट वेश वाली कठोर स्वर में सीता को धमकाती हुई आपस में कहती थी, आओ हम सब मिलकर इसको काट काट करके खा जाए, तिल के समान टुकड़े टुकड़े कर करके बांट ले। उनकी बातें सुनकर एक दिन सीता ने कहा, अरे बहनों वो दिन कब आएगा रे, तुम लोग मुझे जल्दी काट काट कर क्यों नहीं खा जाती। अब इस जीवन के लिए मेरा एक क्षण भी जीने का लोभ नहीं है। मैं अपने स्वामी कमल लोचन भगवान राम के बिना जीना नहीं चाहती। कितना बड़ा तुमको पुण्य होगा तुम मुझे अभी अपनी तलवारों से काट दो। प्राण प्यारे के वियोग में निराहार ही रहकर अपना शरीर सुखा डालूंगी, किंतु उनके सिवाय दूसरे पुरुष को मैं नहीं चाहूंगी। इस बात को सत्य जानो, इसके बाद जो कुछ करना हो सो करो। तुम अपनी तलवार को अपने पास ही क्यों रखती हो, इसका प्रयोग मेरे शरीर पर क्यों नहीं करती हो। सीता की बात सुनकर वे भयंकर शब्द करने वाली राक्षसियां रावण को जा जाकर सूचना देती थीं कि महाराज हमने बहुत धमकाया है, परंतु सीता का ध्यान राम से तनिक भी नहीं डिगने वाला है। जब वे लोग चली जाती तो पीछे से त्रिजटा नाम की राक्षसी वह प्रिय वचन बोलकर सीता को सांत्वना देती हुई बोली, ये मेरी प्यारी सखी, देखो आज कुछ कहने का मौका मिला है, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहती हूँ। तुम मुझ पर विश्वास करो, अपने हृदय से भय को निकाल दो। यहाँ एक श्रेष्ठ राक्षस रहता है, है तो वो राक्षस पर उसका भाव बड़ा श्रेष्ठ है। उसका नाम है अविंध्य। वह वृद्ध होने के कारण बड़ा बुद्धिमान है, वह वृद्ध होने के साथ साथ बड़ा बुद्धिमान है, और वो सदा राम जी के हित चिंतन में लगा रहता है। मैं उससे मिलती रहती हूं। उस अविंध्य राक्षस ने तुम्हारे लिए कुछ संदेश भेजा है। उसने कहा है, तुम्हारे स्वामी महाबली भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ कुशल पूर्वक हैं। इस समय वे इंद्र के समान तेजस्वी वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता किए हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए हुए हैं, और उन्होंने बाली को मार दिया है, सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया है, और अब बहुत जल्दी ही बानरी सेना लेकर वे नया उद्योग करने जा रहे हैं। अब रावण से तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए, क्योंकि नलकुबर ने जो उसको शाप दे रखा है उससे तुम सुरक्षित रहोगी। नलकुबर का शाप यह है, एक बार रावण ने नलकुबर की स्त्री रंभा का स्पर्श किया था, जिससे उसको नलकुबर ने शाप दिया कि तुम किसी भी स्त्री को यदि उसके न चाहने पर उसका स्पर्श करोगी तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। इसलिए वह पर स्त्री को बलात्कार पूर्वक स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे स्वामी रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ लेकर जल्दी आने वाले हैं, उस समय सुग्रीव उनकी रक्षा में रहेंगे। भगवान राम अवश्य तुम्हें यहां से छुड़ा ले जाएंगे। मैं तो यही सोच रहा हूं वो दिन कब आए और मैं अपनी इन वृद्ध आंखों से मरने से पहले पहले एक बार लंका में राम जी के दर्शन कर लूं।